आत्म तेज, आध्यात्मिक तेज। अशांत आदमी के आगे खड़े हो जाओ तो उसको शांति मिलने लगे। उलझे हुए जीवनों को सुलझाने की आंतरिक आध्यात्मिक तेज होता है वो। वो बत्ती बिजली जैसा तेज नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो खाना पीना खा के भैंसा होने को तेजस्वी बोलते हैं। ज्ञान संयुक्त तेज होता है। भक्ति रस का, ज्ञान रस का, वैराग्य ज्ञान, दिव्य परमाणु निकलने लगते हैं ऐसे ज्ञानी के शरीर। ज्ञानी का शरीर चिन्मय हो जाता है, दिव्य परमाणु से भरपूर हो जाता है। उसकी हाजिरी या उसका जहाँ बैठना उठना होता है वो जगह भी शांतिदायी प्रेरणादायी हो जाती है। तभी तो अपन लोग तीर्थ बना देते हैं उनको, उस जगह पर मत्था टेकते हैं। वो ब्रह्म तेज से भर जाता है, जो वेदांत के ज्ञान के अनुकूल अपना आचरण बनाता है तो उसके परमाणु दिव्य होने लगते हैं और ब्रह्म तेज से पूर्ण होने लगता है। ऐसा ब्रह्मवेता हाजिर होता है तभी ठीक है, जानते हैं अपने का जान लेता रहा। वो जब चाहे अपन क्या क्या करते हैं अपने मन में, अपना मन में हूँ गरीब यूं है कोक दी जो आई छे ना, तो बापू त्या बैठा बैठा जुए। इसलिए जिसको जीवित महापुरुष मिलते हैं वो बड़े भागशाली हैं, क्योंकि उनको निगुरे नहीं हैं, उनकी देखभाल करने वाले ब्रह्मवेता की कृपा होती है।
परमात्मा अपने आप में तृप्त रहना, इसमें रुचि होगी। अपना नित्य जो पोथे पढ़ के जो ज्ञान आएगा वो बाहर से आपने थोपा है, वो दवाइयां टॉनिके लेकर जो औषधि से बल आएगा वो बाहर का लिया हुआ है। नाच गान से खुशी बाहर की ले रहे तो आप पराधीन है। अपना स्व का ज्ञान उत्पन्न, स्व का रस उत्पन्न, स्व से स्वास्थ्य लाभ, स्व आपका संपूर्ण औषधियों की खान। जिनको डायबिटीज होती है ना, इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन आप आसन करो तो आपका शरीर इंसुलिन बनाता है। हार्ट अटैक की तकलीफ होती है तो दवाई लेते हैं, लेकिन आप परोपकार करो तो वो औषध अपने शरीर में से ही बन जाते हैं। जो ब्रह्मांड में वो तुम्हारे अंदर है, केवल भूल मिटा दो, बाहर का आश्रय छोड़ते जाओ। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स संन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्रिया। क्रिया अग्नि ये वो छोड़ दिया, हम संन्यासी हो गए। इससे संन्यास नहीं, आसक्ति को त्याग, आशाओं को छोड़ दो। मुझे ये करूं तो सुख मिले, ये पाऊं तो सुख मिले, ये वहम है।
अनेक को जान जान के आप थक जाएंगे। अनेक में जो एक बसा है उसको जानने का प्रयोग करना ही इस योग विद्या और वेदांत विद्या का लक्ष्य है। अनेक को देखते हैं लेकिन अनेक में जो एक है वो जब तक नहीं दिखेगा तब तक भय नहीं जाएगा, तब तक शोक नहीं जाएगा, तब तक वो मस्ती नहीं आएगी। इन तीन दिनों में, चार पांच दिनों में हम अनेक देखें लेकिन अनेक में बसे हुए एक पर निगाह रखें। जिस समय हम ध्यान करते हैं, ये यहाँ हम प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, यहाँ हम कथा सुनने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, यहाँ कोई पितरों को तर्पण करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। हम यदि आध्यात्मिक यात्रा करेंगे तो हमारे बिना तर्पण के उनका उद्धार हो जाएगा। हम यदि सचमुच में गहरे में खो जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, इतना इतना हमारे जीवन में एक नई दिशा मिल जाएगी। हम जो आए हैं वैसे वापस न जाए, ढांचा तो वही का वही घर वापस जाए, लेकिन अंदर से आप बदले हुए आदमी जाए।
ऐसे ब्रह्म बोध से 3 मिनट के लिए भी कोई संपन्न हो जाए तो इंद्र का राज भी कुछ नहीं, वो इतना महान हो जाता है। स्वर्ग का वैभव भी कुछ नहीं, इस जगत का आकर्षण भी कुछ नहीं। वो करेगा सब, खाएगा पिएगा लेगा देगा सब करेगा। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। वो जगत के लोगों को जगत जैसा दिखेगा, जैसे हम खाते हम पीते हम देते लेते, ऐसे ज्ञानी भी दिखेगा, लेकिन ज्ञानी की वृत्ति उसमें ब्रह्म में रहेगी। ऐसा एक सवाल अपने गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरु जी आप आश्रम में है, ये है वो है। राजा जनक बोलते हैं ज्ञानी है, गुरु जी ज्ञान के लिए तो हमको समझ में नहीं आता कैसे ज्ञान। बोले अच्छा जाओ जनक राजा के पास, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ। जनक की वृत्ति राजकाज करते जगत बोध से संपन्न होते हुए ब्रह्म बोध में कैसे है जरा देख क्या। चिट्ठी लिख दी जनक राजा पर, जाने माने भजनानंदी संत थे। जनक राजा ने उस ब्रह्मचारी को कहा अच्छा तो मेरे तो ब्रह्म ज्ञान कैसा हुआ उसका अनुभव करना है। मैं अनुभव तो बाद में कराऊंगा, पहले दक्षिणा दो। एक काम करो, कल सुबह तुम्हें नगर में जाना होगा, पूरा नगर घूमना होगा और मैंने आदेश जारी कर दिए, नगर में खूब सजावट होगी, अच्छे अच्छे रास्तों से तुझे दो जल्लाद ले चलेंगे, तेल का कटोरा देता हूँ, पूरा नगर तुम घूम के आना, तेल का कटोरा में से तो बूंद गिर गई तो सिर उतार दिया जाएगा। हाँ अगर तुम ठीक से घूम के आ गए तो फिर तुम्हें ब्रह्म बोध दे देंगे, ब्रह्म ज्ञान की बात सूक्ष्म बात सुना देंगे, प्राइवेट बात। दिन भर नगर से गुजरा, कहीं शहनाया बज रही, कहीं तुरिया है, कहीं जहाज, कहीं मंजीरे, कहीं नर्तकियां, तो कहीं उत्सव, तो कहीं बैंड बाजा। वैसे ही नगर में सब कोलाहल होता है, राजा ने कुछ विशेष भी रख दिए कहीं कहीं पर। पूरा दिन वो छोरा घूमा ब्रह्मचारी, शाम को आया और जनक ने देखा कि कटोर में से तेल नहीं निकला, छलो छल कटोर भरा था। अच्छा ठीक ब्रह्मचारी, अब समय हो गया है, समय हो गया, भोजन कर लो फिर ज्ञान की बात करेंगे। स्नान विरान करके भोजन खंड में पहुंचे, रसोईया को जो बताया था ऐसी सारी व्यवस्था हो गई, परोस दी गई थाली, हाथ में जल लिया। अब वो ब्रह्मचारी ने एक कोर मुंह में रखा, रसोई ने कहा तुम खाते हो प्रेम से खाओ, लेकिन ऊपर जरा देख लो कैसी तलवार लटक रही है। था तो कोई धातु की तार, लेकिन लगती ऐसे कि धागा, धागे में तलवार टंगी है, बस अभी गिरी अभी गिरी, हवा का झोंका आया कि बस गिरी। वो खाता जा रहा है लेकिन नजर पूरी की पूरी उस तलवार में टिक गई। अलग अलग चीजें हैं थाली में, उनके स्वाद में राग नहीं, अस्वाद में दोष द्वेष नहीं, कहीं नमक ज्यादा था तो कहीं शक्कर ज्यादा थी तो कहीं मिर्च ज्यादा था, और कहीं बहुत बढ़िया था कहीं घटिया था। ऐसे थाल में व्यंजन थे, इधर उधर से खाया, लेकिन उन व्यंजनों की खटास मिठास अच्छाई बुराई चित्त पर नहीं थी, चित्त पर ज्यादा ध्यान उधर का रहा। इससे थोड़ी पीड़ा होती है फिर बड़ी पीड़ा आ जाए तो थोड़ी पीड़ा आदमी भूल जाता है, छोटा सुख होता है तो बड़ा सुख आ जाता तो छोटा सुख भूल जाता है। ऐसी वृत्ति ही वहां चली गई, कैसे भी करके पेट भर लिया, भूखा था। राजा जनक ने भोजन के बाद उसको बिठाया, बोले अब देखो ब्रह्मचारी, नगर में आज तो बहुत व्यवस्था थी, कितनी बराते देखी तुमने। बोले महाराज आवाज तो खूब सुनाई पड़ता था लेकिन बराते कितनी मुझे पता नहीं, क्यों मेरा ध्यान पूरा वहां था। अच्छा क्या क्या देखा? बोले महाराज क्या देखा क्या सुना, बस तेल का कहीं बूंद न धुल जाए। अच्छा वो बूंद धुल न जाए, बूंद संभालने में सुख तो नहीं आ रहा था लेकिन जिम्मेदारी महसूस करके तुम देख रहे थे, धुला नहीं तेल, तेल की बूंद नहीं धुला, ठीक है कटोरा पर ध्यान था। इतना सारा नगर तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा? बोले महाराज रत्ती भर भी नहीं, क्योंकि ध्यान कटोरे में था। बोले ऐसे ही हमारा ध्यान ब्रह्म में होता है इसलिए जगत हमारे में घुसता नहीं।
अपने शरीर के सुख वैभव और प्रतिष्ठा के बारे में नितांत सोचना छोड़ दो तो उससे बढ़कर कोई अवस्था नहीं। हस्ते राजकुमार की नई प्रवृत्ति करो। जब आप परिणामों की चिंता में पड़ते तो स्वर्ग से गिराए जाते। आटलू करी पछी शू अपने आटलू करू पर बदला में लोग शू आपसे। अच्छा तो नहीं करो तो अपने शरीर को वैसे ही तो जलाना है गलाना है। जो देता है वो पाता है, जो रखता है वो खोता है। अब अजमेरी जैसा छोकरा है जाने को करता है तो सब लोग सोचते नहीं जावे तो ठीक है। अनपेलो डाढ़ी वाला हो गया तो जाऊ छू के हा भले क्या रह जाए ये हो तो ना बदल ऐसी बात। ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अपन चले जाए तो दीवाले भी रोने लग जाए, वृक्ष भी रोने लग जाए।
तुम्हारा मन किधर है कैसे पता चले? सपने में जो दिखता है ना समझ लो कि जागृत में मन वही है। जैसा सपना आता है समझ लो कि जागृत में मन वही है। इसलिए जागृत में मन ईश्वर में रखो, ऐसा रखो कि सपना भी ईश्वर के साथ होने का है। इतना ब्रह्माकार वृत्ति को मजबूत करो ब्रह्म भाव को कि सपने में भी द्वैत न भासे। एक अखंड वस्तु चैतन्य स्वरूप बेड़ा पार हो जाए। ओम ओम ओम
अविकम्प योग। केवल इरादा कर लें कि हमें परम सुख चाहिए व्यवहार करते समय भी और ध्यान भजन के समय। इसको बोलते हैं अविकम्प योग। योगी समाधि ध्यान करता है तब तक तो उसका योग है आनंद है, लेकिन उठता है तो कंपित हो जाता है। लेकिन ध्यान में रहे तो शांति और उठे और व्यवहार करे तो भी नजर तत्व पे रहे। मैंने लाइट देखी, पंखा देखा, फ्रिज देखा, गीजर देखा, माइक देखा, लेकिन मुझे ज्ञान है कि सब में विद्युत नेगेटिव पॉजिटिव छेड़े हैं, विद्युत का ही खेल है। मुझे ज्ञान है तो कितनी भी लाइटें अलग अलग हो लेकिन मैं बिजली तत्व को जानता हूं तो हो गया। ऐसे आत्म तत्व को जाना तो कुछ भी होता रहे, यथा योग्य करे फिर परिणाम जो भी आए। ज्ञानी को आग्रह नहीं होता कि ये होना ही चाहिए, करता है फिर हुआ न हुआ सब स्वप्न है। जैसे स्वप्न में सफलता मिली तो क्या, विफलता मिली तो क्या, यश हुआ तो क्या, अपयश हुआ तो क्या। स्वप्न का हाथी उस पे बैठा राजा, अब उसके ऊपर मुकुट सोने का हो चाहे चांदी का हो अथवा चिड़िया बैठ गई पर क्या पता, आंख खुली तो सब गायब। कैसे है ये, जैसा स्वप्न रहने का ऐसा ये संसार। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन का, छोड़ी छोड़ी सब जाते हैं, देह गेह धन राज सब छूटने वाली चीजें हैं। बहती चीजों का बहने का मजा लो, रहने वाले का रहने का मजा लो। हम लोग क्या करते, बहने को रखना चाहते और रहे हुए को पता नहीं, इसी में मार खा जाते। रहने वाला आत्मदेव परमात्मा सदा रहता है और चीजें आती और बहती। जो धन मिल गया सो मिल गया, जो चला गया सो चला गया, धन के पीछे शांति क्यों नाश करते। जो यश मिल गया तो मिल गया, जो अपयश हो गया तो हो गया। मेरा इसने अपयश कर दिया, ये बहुत खराब है, अंदर गांठ बांध के अपने चित्त को संकुचित क्यों करना। किसी का नाम तो दुनिया है, होता रहता है। तो ज्ञानी को कहीं आग्रह नहीं होता, कोई दुराग्रह नहीं होता। साधक को आग्रह रखना चाहिए, संसारी भोग में आग्रह रखता है, साधक साधना में और सम रहने में आग्रह करते। ज्ञानी पूर्ण है उसको क्या आग्रह दुराग्रह। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान।
दिल जा दरवाजा मुँह खोलिया हर एक लाए एक जहेड़ा छो विचारिया तह में घिरंदा मानू कहड़ा कहड़ा हर एक खाम बेगानो आया हर एक साथम यारी हर एक खाम बेगानो आया हर एक साथम यारी हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतिलबु मुंहिंजी दुनिया न्या कंहिंजे लाइ मां ॻायां वेठो ॻाल्हिनि मूं वीचारी हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतिलबु मुंहिंजी दुनिया न्या मुझो मजहब प्यार करण आ प्यार करया मां हर एक के मुझो प्यार अजल अण खुट खूब विराया हर एक के प्यार ही मुझो मालिक खालिक प्यार संदी दिलदारी हिन हुन साचा मुझो मतलब हुत झूम जमका आऊं हे जम जानित हसंदो हित हुत मोती मुक्त विराया वरी वरी मां वसंदो मुंहिंजा मोती निर्मल ज्योति जग चिमके चौधारी हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतिलब मुंहिंजी दुनिया न्यारी
जप नहीं कर सकते लेकिन जिस जिस व्यवहार में हो उसमें सदा स्मरण तो रख सकते कि व्यवहार उसी परमात्मा की सत्ता से हो रहा है। देखना आंख देखती है लेकिन उसकी सत्ता से, कान सुनते हैं तो उसकी सत्ता से, आदमी दौड़ता है तो उस परमात्मा की सत्ता से, पेड़ बड़े होते हैं तो उसकी सत्ता से, पक्षी गीत गाते तो उसी की सत्ता से, झरने कल कल छल छल बहते तो उसी के ओज से, जहां जहां नजर जाए कि वाह वाह तेरी अपरंपार लीला है। जैसे यंत्र देखते हैं, मशीनें देखते हैं तो विद्युत का पता चल जाता है कि सब लाइट के बल से हो रहा है, आवाज भी लाइट की सत्ता से तो पंखा भी लाइट की सत्ता, हरी और लाल लाइट भी उसी विद्युत की सत्ता से करंट के। ऐसे कोई आदमी हरा है कोई लाल है, हरा भरा है कोई कड़का है, लेकिन सब उसी की सत्ता से चल रहे हैं। उमा दारू योशी तकी नाही सबई करावत राम गोसाई।
आप राग रहित हो जाओगे तो जो होना चाहिए वो आपकी हाजिरी मात्र से होकर रहेगा, और जो नहीं होना चाहिए वो आपके होने से ही वो नहीं होगा। आप राग रहित होते ही समर्थ हो जाएंगे, और समर्थ के लिए क्या असंभव है। तो सूर्य के होने से फूल खिलने लगते हैं, पक्षी गीत गाने लगते हैं, बच्चे भी करवट लेने लगते हैं, और बूढ़े भी जगने लगते हैं, जवान भी जगने लगते हैं, हवाएं विशेष आह्लादनी होने लगती है, और सुबह हो जाती है। सचराचर में एक चेतना व्याप जाती है सूर्य के होने मात्र से। तो सूर्य के होने से जो होना चाहिए अपने आप होने लगता है, करना नहीं पड़ता सूर्य को। न्यायाधीश कुर्सी पे आ जाए तो चपरासी और झाड़ू लगाने वाले, पानी का मटका भरने वाले और वकीलों को, वादी प्रतिवादी को बुलाने वाले व्यक्ति अपने आप कार्यरत हो ही जाते। न्यायाधीश न्यायालय की कुर्सी पर आ जाए तो काम बाकी का होने लगता है। अगर न्यायाधीश न्यायालय की कुर्सी छोड़कर झाड़ू लगाने लग जाए, पानी का मटका भरने लग जाए, असील को और वकील को बुलाने लग जाए तो अव्यवस्था हो जाएगी। ऐसे तुम्हारे जो ये मन इंद्रियां हैं, ये आपके नौकर चाकर हैं। आप अपने स्व की गद्दी पर आए तो जो होना चाहिए वो स्वाभाविक होने लगेगा, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा। अभी क्या होता है कि जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, जो हो रहा है वो भा नहीं रहा, और जो भा रहा है वो टिक नहीं रहा, हम मुसीबत में चले जा रहे हैं। तो राग रहित हुए बिना भोगी योगी नहीं हो सकता, भक्त भगवान को नहीं पा सकता, स्वार्थ सेवा में नहीं बदला जा सकता, और जीव ब्रह्म में नहीं मिल सकता है। इसलिए राग रहित होना ही जीवन का लक्ष्य। इन राग मिटाया जाता है अंतर्मुखता से, राग मिटाया जाता है जहां से धारा उत्पन्न होती है,
आपकी संबित कहो, वृत्ति कहो, धारा कहो, स्फूर्णा कहो, संकल्प कह दो चलो, तो उस चैतन्य से जो पूर्णा उठता है और इंद्रियों के द्वारा बहिर संबित होती है तब जागृत अवस्था थी, और वही आपका स्फूर्णा जब हिता नाम की नाड़ी में घूमता है तब सपने की दुनिया देखती है। वही फुरना जब कुंठित हो जाता है वही तो सुषुप्ति अवस्था आती है। सुषुप्ति अवस्था आती है तो पहले मस्तक को घेर लेती है, क्यों कर देते क्यों संबित स्फूर्णा बंद हुआ वहां कुंठित हो गया। वही संबित जहां से स्फुरित होती है उस अवस्था को, उस तत्व को तुर्यावस्था कहते हैं। तुरिया अवस्था साक्षात्कार की अवस्था है, ईश्वर प्राप्ति की अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है, और ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति संसार है, बदलने वाली अवस्था है, दुखद अवस्था है। यहाँ का दुख तो दुख है लेकिन जिसको अपन लोग सुख मानते हैं वो भी दुख से भरा है। यहाँ का शत्रु तो शत्रु है ही लेकिन जिसको हम मित्र समझते हैं वे भी कभी न कभी शत्रुता से भरे हुए दिखेंगे। जितना मित्र में राग अधिक होगा वो मित्र जरूर ठोकर मारेगा, जितना धन में राग अधिक होगा वो धनवान धन के कारण ही दुखी रहेगा, जितना राग परिवार में अधिक होगा परिवार के कारण ही वो दुखी हो जाएगा, जितना राग देह में होगा वो देह के कारण ही चिंतित रहेगा। राग जहां भी आपने लगाया वहां दुख दिए बिना नहीं छोड़ेगा। तो राग रहित होने के लिए जो सुख में ही तो राग होता है, तो सुख लेने की अपेक्षा सुख देने के भाव से जो क्रिया करता है, भोग भोगने की अपेक्षा भोग का सदुपयोग करने की जो चेष्टा करता है उसका राग क्षीण होता जाता है। जितने अंश में राग क्षीण होता जाता है उतने अंश में उसका सामर्थ्य आता जाता है। फिर चाहे मीरा कीर्तन करते करते राग भूली और जहर अमृत हो गया, चाहे शबरी बुहारी करते करते राग भूली और राम जी द्वार पर आए, चाहे प्रहलाद हरि को स्नेह करते करते ऐहिक राग भूले और नरसिंह अवतार प्रकट हो गया।
रामकृष्ण परमहंस अपने भांजे को बुलाया, बोले तू ज्ञान चाहता है ना तो जा उनके चरण पकड़, वो परमहंस हैं, उनसे उपदेश ले ले। हाँ गया महाराज जी, आत्मज्ञान कैसे हो, देह दृष्टि से पार कैसे हो, क्या के गंगा जल और नाले का जल जब तक भेद दिखता है तब तक ज्ञान नहीं हुआ। गंगा जल और नाली प्रणाली के जल में भेद दिखता है तब तक ज्ञान नहीं हुआ। कुत्ते में और जूठन में और शुद्ध भोजन में जब तक भेद दिखता है तब तक ज्ञान नहीं। ज्ञान पाना है तो सब में देखो, दुत्कारने वालों में और वो साथ में लालिया खा रहा है उसमें, और वो माई ठीक है कुत्तों के साथ बैठ के खाती थी, उसका मतलब ये नहीं कि कुत्तों के साथ बैठ के खाओ तो ज्ञान हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भ्रष्ट हो जाएंगे। गंगा जल को और नाले के जल को एक मानेंगे तो भ्रष्ट व्यवहार हो जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से, और ज्ञान की इतनी ऊंचाई कि देह दृष्टि बची ही नहीं, भ्रष्ट होने वाला बच्चा ही नहीं। भ्रष्ट होने वाला जब भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्ट होने वाला जब मिट जाए, भ्रष्ट नहीं भ्रष्ट होने वाला जब मिट जाए ज्ञान के उस विशाल सागर में, तब आदमी सुखी होता है। देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निसार, देह की सत्यता दिखी
परिस्थितियों की या संसार की सत्यता का अंश जितना प्रगाढ़ है, जितनी संसार की सत्यता ज्यादा है, उतना वो आदमी चिंतित, दुखी, भयभीत और योग से दूर है। है तो बड़ा योगी समाधि निष्ठ, और समाधि से उठा तो ये ठीक है, ये बेठीक है, चालू रहा, तो भगवान के समग्र स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। साधक को तो ठीक बैठी का ख्याल करना ही चाहिए, जब तक भगवान के समग्र स्वरूप में नहीं पहुंचा तब तक तो पवित्रता से, शास्त्र विधि से जीना चाहिए। भगवान के समग्र स्वरूप का अनुभव हो गया तो फिर उसके ऊपर शास्त्र विधि, नियम, पुण्य पाप कोई लागू नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं, मैं आसक्त मना पार्थम योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासी तत्व। मेरे में जिसका मन आसक्त है, ऐसा है प्यारा अर्जुन, तू मेरे समग्र स्वरूप से, स्वरूप को निसंदेह तू जैसे समझ सकता वैसे तू सुन। भगवान का समग्र स्वरूप का जब तक बोध नहीं हुआ, तब तक आंखें मूंद के ध्यान करके अंतर में तो भगवत शांति पाएंगे, लेकिन बाहर आएंगे तो भेद भाव से चित्त विक्षिप्त हो जाए। और जो आदमी सोचते हैं कि यहाँ का पानी ऐसा है, अब वहां जाऊं और वहां की ठंड ऐसी है तो कहां जाऊं, कहां गया तो वहां के लोग ऐसे हैं तो फिर कहां जाऊं, कहां गए तो फिर वहां का जरा खान पान ऐसा है तो यहां जाऊं, उसका योग ज्ञान कमजोर हो जाएगा। जो जहां है वहां डट के अगर स्वरूप में नहीं जाता है तो वो उसका योग घुमाता रहेगा उसको, और उसी को कई लोग मान लेते फकरशाही, मस्ती। ये मस्ती नहीं है, व्यवस्था है। ध्यान से सुने साधक लोग, ये व्यवस्था है, उसको मस्ती मान लेते हैं, और ऐसे मस्त बहुत घूमते हैं। क्या हाल है कि अपने तो मस्त हैं। मस्त कैसे हैं कि बस जहां मौज आई चल दिया, जहां मौज आए वहां चल दिया, कि जरा सा प्रतिकूलता आई तो भाग लिए। ये जरा ईमानदारी से, गहराई से देख, नहीं तो कहीं मन ठगता तो नहीं लाला आपको। मस्तराम वो है, हुरदूत किया भिखारियों ने और फिर भी शोभ नहीं हुआ। वो भटके हुए भिखारियों ने भोजन की पत्तलें फेंक दी, उन पत्तलों में भी से उठाकर अपनी शुदा निवृत्त कर दे, फिर भी कोई फरियाद नहीं, उद्वेग नहीं, वो मस्त है। अपन मस्त कैसे? अपन तो भगेड़ू राम है, मस्त राम नहीं है।
वह ईश्वर की तरह परम शोभायमान होता है और परम आनंद।
परमात्मा ध्यान का पता है, वो अपने शरीर में ईश्वर की नहीं रहता है, संसार में भी ईश्वर की नहीं रहता है। वस्तुओं के लिए, पैसों के लिए, चीजों के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाता। जैसे ईश्वर के आगे सब हाजिर हो जाता है, ऐसे उस आत्मरामी महापुरुष के आगे सब हाजिर हो जाएगा। बंदा होके नहीं जीता है, खुद भगवान होकर जीता है, पुजारी होकर नहीं। उसका कोई पूजनीय नहीं रहता, सारी पूजाएं हो जाए फिर भी कोई पूजा बाकी रह जाती है। वो गुरुदेव की पूजा उसने ठीक से कर ली तो फिर अब उसकी सारी पूजाएं सदा हो गई। वो संसार में रहता है लेकिन ईश्वर होके रहता है, जीव होके नहीं रहता। पुण्य पाप के पोटले उसके नहीं बनते। ऐसे गुरु से धोखा करने वाले कितने फूटे कर्म है।
ज्ञानी को देखकर कईयों को, उनके आचरण को देखकर कईयों को वाल पैदा। ये तो इमने शरीर द्वारा आटलू देखा है, तो इमने ऊंडाण में केटलू हे, एटला में तेटलू तो तेटला में केटलू। ब्रह्म ज्ञानी संघ धर्मराज करे सेवा। तमने साक्षात्कार था तमारा संपर्क में कोई गयो हो ने तो पछी एनो वाड़वा को ना करे, एनो आदर करे। ब्रह्म वेता नो मान यमराज का वहां दंडा कमजोर हो जाता, यम के नियम वापस चले जाते। ऐसा आत्मा और वो सबके पास है, उतने का उतना, फिर भी यार पाते नहीं है, वरी क्या करना चाहिए। आत्मज्ञान होने के पहले अगर जंगल में भी बैठे लेकिन आत्मचिंतन करते हैं ना, तो प्रकृति को कई रूप लेकर तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। आप आत्म ध्यान में अपने ध्यान में बैठे और सांप आ गया तो सांप का स्वभाव बदल जाए, सिंह आ गया तो भूखा सिंह आपको नहीं छुए। एक बार विवेकानंद बहुत उद्विग्न हो गए, इतनी भर जवानी में घर बार छोड़ के भगवान को खोजने निकले और इतना दुर्भाग्य कि अभी तक प्रभु नहीं मिलता तो जीकर भी क्या करना, इस दुख रूप शरीर को कितना संभालना, नहलाओ खिलाओ खिलाओ घुमाओ भिक्षा मांगो एक करो, ये क्या, इससे तो मर जाना अच्छा है। अज्ञानी होकर जीना ईश्वर के बिना, ईश्वर साथ में और उसकी मुलाकात नहीं और फिर जी के क्या, आत्महत्या करने का विचार आ गया। ऐसा नहीं कि कहीं अपने को मार डाल, किसी के काम आ जाए, संत हृदय थे, अंत में जाए तो किसी के काम आ जाए, तो जंगल में तो थे कि चलो ऐसे कोई शेर के आगे जाके खड़ा हो जाऊं, सिंह खा जाए उसकी तो भूख मिटे, हमारी भूख न मिटी तो कोई बात नहीं, हमें तो ईश्वर चाहिए, उसे तो खाना चाहिए, तो खाना तो है ही है, ये बॉडी तो उसके काम का है। खोजते खोजते शेर बबर के पास पहुंच गए, भूखा शेर नजदीक गए तो शेर भाग गया। ऐसा होता, आप ईश्वर के लिए ईमानदारी से ईश्वर के लिए जीते ना तो काल के सामने भी जाएंगे तो काल को किनारा रखना, आप मृत्यु नहीं कर सकता है। ऐसे दूसरे भी कई प्रसंग होते हैं, कई महापुरुषों के जीवन में होते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध महापुरुष होते हैं उनके जीवन की घटनाएं लोगों तक पहुंचती है, जो प्रसिद्ध नहीं है उनकी घटनाएं लोगों तक नहीं पहुंचती।